आगे सबक देखिए भाई। किताब उसीर असीयरु जमउ सीरतिन वहिय तरीकतु फिल उमूर وفي الشرع تختص بسير النبي عليه الصلاة والسلام في مغازيه قال الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين أما الفرضية فلقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ولقوله عليه الصلاة والسلام الجهاد ماض إلى يوم القيامة بھئی گزشتہ سبق میں ہم نے باب قطعی طریق پڑھا تھا یعنی ڈاکے سے متعلقہ احکام ذکر کیے تھے صاحب ہدایہ نے اور میں نے بتلایا تھا کہ قطعی طریق کو سرقہ کبرا کہتے ہیں عام چوری جو ہے اس کو سرقہ صغرا کہتے ہیں اور قطعی طریق کو سرقہ کبرا کہتے ہیں اور اس کو سرقہ کبرا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ضرر عام ہے اس کا نقصان عام لوگوں کو پہنچتا ہے جبکہ وہ سرقہ صغرا کے اندر تو جس شخص کا مال چوری ہوا ہے صرف اسی کا نقصان ہے لیکن اس کے اندر جب راستے پر ڈاکہ ڈالا جائے گا تو لوگ اس راستے پر سفر کرنے سے خوف کھائیں گے اور جس کی وجہ سے تجارت وغیرہ پر اثر پڑے گا اور اس کا نقصان تمام لوگوں کو پہنچے گا تو اس قطعی طریق کو سرقہ کبرا کہتے ہیں اور نیز اس وجہ سے بھی اسے سرقہ کبرا کہتے ہیں کہ اس کے اندر سزا بڑی سخت ہے سرقہ صغرا کے اندر تو صرف ہاتھ کاٹا جاتا ہے جبکہ اس کے اندر ہاتھ بھی کاٹا جاتا ہے اور پاؤں بھی کاٹا جاتا ہے اور بعض صورتوں میں قتل کیا جاتا ہے یا سولی دی جاتی ہے بھائی قطعی طریق کی وجہ سے ڈاکوؤں پر حد جاری کی جائے گی اور اس حد کے لیے کئی شرائط علماء نے ذکر فرمائی ہیں بھائی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ قطعی طریق کے اندر حد جاری کرنے کے لیے 6 شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ ڈاکوؤں کو قوت حاصل ہو وہ طاقتور ہوں کہ قطعی طریق کر سکیں کوئی عام لوگ ان کا مقابلہ نہ کر سکیں اور قطعی طریق کی حد جاری کرنے کے لیے دوسری شرط یہ تھی کہ وہ قطعی طریق شہر سے باہر ہونا چاہیے اور دور ہونا چاہیے اور تیسری شرط یہ تھی کہ وہ قطعی طریق دارالاسلام میں ہونا چاہیے اور چوتھی شرط یہ تھی کہ وہ مال جو ڈاکوؤں نے لوٹا ہے وہ اتنی مقدار ہو اس کی کہ اس کو جب تقسیم کیا جائے تمام ڈاکوؤں پر تو ہر ڈاکو کے حصے میں نصاب کے بقدر مال ضرور آئے یعنی کم از کم 10 درہم ہر ڈاکو کے حصے میں ضرور آئیں پھر ہی ان پر حد جاری کی جائے گی بھائی اور پانچویں شرط یہ تھی کہ وہ جو ڈاکو ہیں ان میں کوئی بچہ یا مجنون یا وہ لوگ جن پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے ان کا کوئی قریبی محرم رشتہ دار نہ ہو اگر ڈاکوؤں کے اندر کوئی بچہ ہوا یا مجنون ہوا یا جن لوگوں پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے ان کا کوئی قریبی محرم رشتہ دار ہوا تو پھر حد جاری نہیں کی جا سکتی بھائی اور چھٹی شرط یہ تھی کہ ان ڈاکوؤں پر حد اس وقت جاری کی جائے گی جب یہ توبہ سے پہلے پکڑے جائیں اگر توبہ کے بعد یہ پکڑے گئے ہیں تو پھر حد ان سے ساقط ہو جائے گی بھائی اور پھر صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ یہاں 4 صورتیں بنتی ہیں ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا لیکن مال لوٹنے یا قتل کرنے سے پہلے ہی وہ پکڑے گئے دوسری صورت ہے کہ انہوں نے صرف مال لوٹا ہے اور تیسری صورت یہ ہے کہ انہوں نے صرف قتل کیا ہو اور چوتھی صورت یہ ہے کہ انہوں نے مال بھی لوٹا ہے اور قتل بھی کیا ہے اور قرآن کے اندر بھی ان کی 4 سزائیں ذکر ہیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں ان کی جزا یہی ہے کہ ان یقتلوا کہ ان کو قتل کیا جائے او یصلبوا یا ان کو سولی دی جائے او تقطع ایدیہم و ارجلہم من خلاف یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کٹوا دیے جائیں او ینفوا من الارض یا ان کو زمین سے دور کر دیا جائے یعنی قید میں ڈال دیا جائے تو 4 سزائیں ذکر ہیں ڈاکوؤں کی قرآن کے اندر اور ائمہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اختیار ہے امام کو کہ ان سزاؤں میں سے جو سزا بھی دینا چاہے وہ دے سکتا ہے क्योंकि इनके दरमियान अव आया है और अव जो है वो तखयीर के लिए आता है, जबकि फुकहाए अहनाफ फरमाते हैं कि नहीं, यहां पर ये अव तखयीर के लिए नहीं आया बल्कि ये तकसीम के लिए आया है कि डाकों के अहवाल मुख्तलिफ हैं, उनके जुर्म की नौइयत मुख्तलिफ है, तो उस एतबार से सजा भी मुख्तलिफ होगी। लिहाजा अगर सिर्फ डाकुओं ने काफिले वालों को डराया धमकाया है और माल लूटने या कत्ल करने से पहले ही वो पकड़े गए हैं तो इस सूरत में सिर्फ उनको जेल में डाला जाएगा और कुछ सजा भी हाकिम दे दे, इनको कोड़े वगैरह लगाए। और अगर डाकुओं ने माल लूटा है तो फिर इस सूरत में इनके हाथ और पांव मुखालिफ सीमत से कटवा दिए जाएंगे। और अगर डाकुओं ने सिर्फ कत्ल किया है तो इन डाकुओं को भी बतौर हद के कत्ल कर दिया जाएगा, और ये कत्ल करना हद के तौर पर है, लिहाजा मकतूल के औलिया भी मुआफ नहीं कर सकते। और अगर डाकुओं ने माल भी लूटा है और कत्ल भी किया है तो इंदल अहनाफ इमाम को इख्तियार है चार सजाओं का, वो चाहे तो इनको सिर्फ कत्ल करवा दे या सिर्फ इनको सूली दे दे या इनके साथ हाथ पांव कटवाने को भी जमा कर दे कि हाथ और पांव भी काटे और कत्ल भी कर दे या हाथ और पांव भी काटे और सूली भी दे दे, तो इमाम को इख्तियार है। तो हमारे नजदीक ये जो कुरान के अंदर चार सजाएं जिक्र हैं ये इख्तियार देने के लिए नहीं है बल्कि ये तकसीम के लिए है कि जुर्म की नौइयत जिस किस्म की होगी उसी के मुताबिक सजा दी जाएगी। और फिर साहिब हिदाया ने आपको यह भी बतलाया कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह इख्तिलाफ करते हैं चौथी सूरत के अंदर कि जिसके अंदर इमाम को इख्तियार है कि वो हाथ और पांव भी कटवा सकता है और उसके साथ फिर कत्ल करवा दे या सूली दे दे, तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये एक ही जुर्म किया है लिहाजा एक ही हद नाफिज की जाएगी। हाथ और पांव का काटना अलग हद है और कत्ल करना या सूली देना अलग हद है, लिहाजा जुर्म जब एक है तो एक हद उन पर नाफिज की जाएगी। और नीज इसलिए क्योंकि हुदूद के मसले के अंदर जब दो ऐसी हदें जमा हो जाएं कि एक के अंदर उज़्र यानी हाथ काटना है और दूसरे के अंदर जान जाएगी यानी रजम किया जाएगा, तो अगर इस तरह की दो हदें जमा हो जाएं तो सिर्फ वो जान लेने पर ही इक्तिफा कर लिया जाएगा और उज़्र को नहीं काटा जाएगा। जैसे एक शख्स ने चोरी भी की है और उसने जिना भी किया है और वो शादीशुदा है, तो अब चोरी के हद के तौर पर इसका हाथ काटा जाएगा और जिना के हद के तौर पर इसे रजम किया जाएगा, तो यहां पर सिर्फ रजम करने पर ही इक्तिफा किया जाएगा, उसका हाथ नहीं काटा जाएगा, क्योंकि उज्र का तलफ करना वो जान के तलफ करने के अंदर ही दाखिल हो गया भाई। जबकि शेखैन रहमहुमल्ला फरमाते हैं कि ये हाथ और पांव काटना और फिर सूली देना या कत्ल करना ये दो अलग अलग सजाएं नहीं हैं, ये एक ही सजा है और ये सजा इसलिए सख्त हो गई क्योंकि इसका जुर्म बहुत सख्त है। इसने इंतहा दर्जे तक अमन को खत्म किया है कि इसने माल भी लूटा है और कत्ल भी किया है, तो लिहाजा इसलिए इसको ये सजा दी जाएगी। और फिर साहिब हिदाय ने बतलाया के कुदूरी के अंदर तो साहिब कुदूरी ने इख्तियार जिक्र किया है कि इमाम इनको कत्ल करवा सकता है या सूली दे सकता है, मालूम हुआ सूली देना जरूरी नहीं, लेकिन इमाम अबू यूसुफ रमला से रिवायत है कि इमाम सूली जरूर देगा, इमाम सूली को नहीं छोड़ सकता क्योंकि वह मंसूस साले है, नस के अंदर उसका जिक्र आया है ताकि खूब शोहरत हो जाए और लोगों को खूब इबरत हासिल हो जाए भाई। और फिर सूली का तरीका भी बतलाया था, मैंने बतलाया सूली किस तरह दी जाएगी, इसमें उलमा दोनों तरफ गए हैं, साहिब कुदूरी और इमाम करखी रहमतुल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि इस डाकू को जिंदा सूली दी जाएगी, एक सीधी लकड़ी जमीन में गाड़ देंगे और ऊपर एक लकड़ी उसके लगाएंगे और उसके साथ डाकू के हाथ बांध देंगे और फिर कुछ नीचे एक और लकड़ी बांध देंगे और उस पर डाकू के पांव बांध देंगे, तो लिहाजा इस डाकू को जिंदा ही इस लकड़ी पर बांध दिया जाएगा और फिर नेजे के जरिए इसके सीने और पेट को फाड़ दिया जाएगा, इसको कत्ल कर दिया जाएगा। जबकि इमाम तहावी रहमतुल्लाह इस बात की तरफ गए हैं कि पहले कत्ल किया जाएगा फिर सूली दी जाएगी, قتل کیا جائے گا اور پھر سولی دی جائے گی، ورنہ تو یہ مسلہ بن جائے گا۔ میں نے بتلایا تھا مسلہ اسے کہتے ہیں کہ مرنے والے کے کان کاٹ دیے جائیں، ناک کاٹ دی جائے، ہونٹ کاٹ دیے جائیں، آنکھیں پھوڑ دی جائیں، تو یہ ہے مسلہ بھائی کہ شکل بگاڑ دی۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو زندہ سولی دی جائے گی اور اس کے پیٹ میں نیزے مارے جائیں گی، یہ تو مسلح ہے اور مسلح سے تو منع کیا گیا ہے۔ تو علماء اور فقہا اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں، کہ یہ مسلح نہیں ہے۔ عرب کے ہاں نیزے کے ذریعے بھی قتل کا طریقہ تھا اور اس کو وہ مسلح نہیں کہتے تھے۔ اور اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ مسلح ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ اور مسلوں سے تو منع کیا گیا ہے لیکن اس مسلح کا استثناء موجود ہے، لہذا اس کو اسی طرح قتل کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر بتلایا تھا کہ اس کو قتل کرنے کے بعد یا سولی دینے کے بعد 3 دن تک اسی طرح اس کو لٹکا رہنے دیں گے تاکہ لوگوں کو خوب عبرت ہو جائے، اور 3 دن کے بعد اس کو ہٹا دیں گے ورنہ اس کے بدن سے بدبو شروع ہو جائے گی اور جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے نہیں، اس کو اسی طرح اس لکڑی پر اس کو لٹکا رہنے دیں گے یہاں تک کہ اس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جائے تاکہ خوب عبرت ہو جائے لوگوں کو بھائی۔ اور پھر یہ بھی بتلایا تھا کہ ڈاکو کو جب قصاص میں قتل کیا جائے گا تو پھر اس پر جو مال اس نے لوٹا ہے اس کا ضمان نہیں آئے گا، اس لیے کیونکہ چوری کے مسئلے میں ہم آپ کو بتلا چکے ہیں کہ قطع اور ضمان اکٹھے نہیں ہو سکتے، قطع ہے تو ضمان نہیں اور ضمان ہے تو قطع نہیں، تو یہاں جب قتل کر دیا گیا تو ضمان نہیں آ سکتا بھائی۔ اور یہ بھی بتلایا تھا اگر ڈاکوؤں میں سے صرف ایک آدمی قتل کر دے پھر بھی ساروں کو حد کے اندر قتل کیا جائے گا بھائی، اور یہ قتل چاہے وہ لاٹھی کے ذریعے کریں یا تلوار کے ذریعے کریں یا پتھر کے ذریعے کریں، جس طریقے سے بھی یہ قتل کریں ان سب کو قتل کیا جائے گا۔ حالانکہ عام احوال میں آپ جانتے ہیں کہ کوئی کسی کو اسلحے کے ذریعے قتل کرے پھر اسے قصاص میں قتل کرتے ہیں، کسی اور طریقے سے قتل کرے تو پھر اسے قتل نہیں کیا جاتا، لیکن یہاں پر ان کو قتل کیا جائے گا ہر حال میں بھائی۔ اور اگر ڈاکو نے قتل بھی نہیں کیا اور مال بھی نہیں لوٹا اور صرف زخمی کیا ہے تو پھر اس صورت میں کہتے ہیں حد نہیں آئے گی، البتہ اس سے زخم کا قصاص لیا جائے گا اگر قصاص ممکن ہے۔ بات سمجھ میں آگے، میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بعض زخموں کے اندر قصاص آتا ہے لیکن قصاص وہیں آئے گا جہاں برابری ہو سکے، مثلا ایک آدمی نے دوسرے کا ہاتھ کلائی کے جوڑ سے کاٹا ہے اور یہاں پر تو برابری ہو سکتی ہے کہ مجرم کا ہاتھ بھی کلائی کے جوڑ سے کاٹ دیا جائے، لیکن اگر مجرم نے دوسرے شخص کا ہاتھ کلائی کے درمیان سے کاٹا ہے تو کلائی کے درمیان تو ہڈی ہے اور ہڈی تو سخت چیز ہے اور اس کے توڑنے پہ تو برابری نہیں ہو سکتی، تو مجرم کا ہاتھ بھی بعین ہی اسی طرح توڑ دیا جائے اور کاٹ دیا جائے جس طرح اس دوسرے آدمی کا ہاتھ اس نے کاٹا تھا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ ہڈی سخت چیز ہے، بعین ہی اسی طرح توڑنا ممکن نہیں ہے، لہذا اس صورت میں پھر ضمان آئے گا قصاص نہیں آ سکتا۔ تو یہاں پر بھی جب ڈاکو نے مال بھی نہیں لوٹا، قتل بھی نہیں کیا، البتہ زخمی کیا ہے، تو پھر اگر ان زخموں کا قصاص ہو سکتا ہے تو قصاص لے لیا جائے گا وہ، اور اگر ان زخموں کا ضمان آ سکتا ہے تو ضمان لے لیا جائے گا۔ اور یہ جو قصاص لینا اور ضمان لینا ہے یہ جن کو زخمی کیا گیا ہے ان کے سپرد ہے، وہ قصاص یا ضمان لینا چاہیں تو قصاص یا ضمان لے لیں اور وہ معاف کرنا چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں بھائی۔ اور اگر ڈاکو نے مال بھی لوٹا ہے اور زخمی بھی کیا ہے تو پھر اس صورت کے اندر اس نے مال لوٹا ہے تو اس کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کٹوا دیے جائیں گے اور زخموں کا ضمان یا قصاص نہیں لیا جائے گا، اس لیے کیونکہ نفس سے کم جو ہے یعنی اعضاء وغیرہ ان کے ساتھ مال والا برتاؤ کیا جاتا ہے، تو جب ڈاکو پر حد واجب ہو گئی تو اب اس سے ضمان نہیں لیا جا سکتا۔ اور پھر اس کے بعد صاحب ہدایہ نے وہ صورتیں ذکر فرمائیں جن کے اندر حد ڈاکو سے ساقط ہو جاتی ہے، اور وہ 4 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ ڈاکو توبہ کر لے پکڑے جانے سے پہلے ہی، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان ڈاکوؤں کے درمیان کوئی بچہ ہو یا مجنون ہو یا جن پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے ان کا کوئی قریبی محرم رشتہ دار ہو، یا اسی طرح اگر وہ جو ڈاکو ہیں وہ قافلے کے اندر ہی شامل تھے پہلے سے تو یہاں پر حفظ کے اندر خلل آ گیا، حفاظت کے اندر خلل آ گیا، لہذا ان ڈاکوؤں پر بھی حد جاری نہیں کی جا سکتی۔ اور اسی طرح یہ بھی بتلایا کہ اگر ڈاکوؤں نے شہر کے اندر ڈاکہ ڈالا ہے یا شہر کے قریب ڈاکہ ڈالا ہے تو پھر اس صورت میں یہ قطعی طریق نہیں ہے، اس صورت میں حد واجب نہیں ہوگی۔ لیکن میں نے بتلایا کہ فتویٰ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں شہر کے اندر بھی کوئی ڈاکہ ڈالے یا شہر کے قریب بھی ڈاکہ ڈالے تو یہ بھی قطعی طریق ہے، اس پر بھی ڈاکے کی حد جاری کی جائے گی، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر ہی فتویٰ ہے بھائی۔ اور پھر صاحب ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو گلا دبا کر قتل کر دے تو اس صورت کے اندر قصاص نہیں آئے گا بلکہ دیت آئے گی، اور اگر ایک ہی شخص نے ایک سے زیادہ مرتبہ گلا دبا کر لوگوں کو قتل کیا ہے تو گلا دبانے میں ویسے تو قصاص نہیں آتا، لیکن اس طرح اگر وہ ایک سے زیادہ مرتبہ لوگوں کو قتل کرے تو پھر اس کو بھی قتل کیا جائے گا، معلوم ہو یہ زمین میں فساد پھیلا رہا ہے بھائی۔ اور پھر میں نے ایک اعتراض اور اس کا جواب بھی ذکر کیا تھا۔ ہدایہ کی عبارت پر دراصل یہاں اعتراض ہوتا ہے جہاں انہوں نے توبہ کو ذکر کیا۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ صاحب ہدایہ نے بتلایا کہ توبہ کی وجہ سے حد ساقط ہو جائے گی، اس لیے کیونکہ نص کے اندر اس کا استثناء ہے، توبہ کرنے والے کا استثناء ہے نص کے اندر، قرآن کے اندر۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، مگر وہ ڈاکو جو توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قادر ہو یعنی ان کو قابو میں لے آؤ، تو تمہارے قابو میں آنے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیں تو فعلموا ان اللہ غفور الرحیم، تو جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ معلوم ہوا توبہ کرنے کے بعد ان پر ڈاکے کی حد جاری نہیں کی جائے گی۔ تو ایک تو یہ دلیل ذکر کی صاحب ہدایہ نے کہ توبہ کرنے والے پر حد جاری نہیں کی جائے گی، اور پھر آگے عقلی دلیل بھی ذکر فرمائی، کہتے ہیں اس لیے کیونکہ توبہ کا دار و مدار مال کے واپس لوٹانے پر ہے، اور جب یہ مال واپس لوٹا رہے ہیں تو پھر مال کے ساتھ تو حد جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب مال لوٹا دیں گے واپس تو خصومت ختم ہو گئی، اور جب خصومت ختم ہو گئی تو اب حد جاری نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ڈاکے اور چوری میں حد جاری کرنے کے لیے خصومت ضروری ہے بھائی۔ یہاں پر صاحب ہدایہ پر اعتراض ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ توبہ جو ہے مال کے واپس کرنے پر موقوف ہے یا موقوف نہیں ہے؟ مال کا واپس کرنا یعنی ڈاکوؤں نے جو مال لوٹا ہے وہ ان اصل مالکوں کو واپس کر دیں پھر ہی توبہ ہوگی، تو اے صاحب ہدایہ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ توبہ جو ہے مال کے واپس کرنے پر موقوف ہے یا نہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ مال کے واپس کرنے پر موقوف نہیں ہے تو پھر آپ کی علت ذکر کرنا، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ توبہ مال کے واپس کرنے پر موقوف ہے تو پھر تو آپ کی یہ دلیل دینا ہی صحیح نہیں ہے۔ اگر مال کے بغیر ہی توبہ ہو جاتی ہے تو آپ کا یہ کہنا کہ توبہ موقوف ہے مال کے واپس کرنے پر یہ علت ہی صحیح نہیں، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ توبہ مال کے واپس کرنے پر ہی موقوف ہے تو پھر تو اسی کا ذکر تو پیچھے جو توبہ ذکر ہوئی مال ہوا اس سے بھی یہی توبہ مراد ہے کہ جس میں وہ مال واپس کر دیں، جب پیچھے بھی یہی توبہ ذکر ہے تو اس کو ایک الگ دلیل کے طور پر ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو کوئی الگ دلیل بنتی ہی نہیں، پیچھے نقلی دلیل میں آ گیا تھا کہ وہ توبہ کر لیں، اور توبہ سے کون سی توبہ مراد ہے؟ جس میں وہ مال واپس کریں، تو لہذا ایک الگ دلیل اس کو بنانا یہ تو درست ہی نہیں ہے۔ تو پھر میں نے بتلایا تھا کہ علماء فرماتے ہیں کہ دراصل اس سلسلے میں علماء کے دو قول ہیں، صاحب ہدایہ کی فصیح و بلیغ عبارات چل رہی ہیں، صاحب ہدایہ نے دونوں کے اقوال کو جمع کر دیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ توبہ کا دار و مدار مال واپس کرنے پر ہے، بعض کہتے ہیں توبہ کا دار و مدار مال واپس کرنے پر نہیں، توبہ ویسے بھی ہو جائے گی، ہاں البتہ مال اس کو بعد میں بطور زمان کے واپس کرنا پڑے گا۔ تو اس سلسلے میں معلوم ہو فقہا کے دو قول ہیں، تو صاحب ہدایہ نے دونوں کو جمع کر دیا، وہ جو نص سے ثابت ہے اس سے وہ توبہ مراد لے لی جس میں مال واپس کرنا ضروری نہیں، اور یہاں پر آگے ان کی دلیل ذکر کر دی جن کے نزدیک مال کا واپس کرنا ضروری ہے، تو گویا یہ ایک الگ علت ایک الگ دلیل ہو گئی، بات سمجھ میں آ گئی۔ اور بتلایا تھا کہ جب اس کے اندر حد نہیں آئے گی تو پھر بندے کا حق ظاہر ہو جائے گا، جب بندے کا حق ظاہر ہو گیا ڈاکو نے توبہ کر لی ہے اور اس نے مال واپس لوٹا دیا ہے مثلاً، तो अब बंदे का हक जाहिर हो गया। अगर किसी को इसने कत्ल किया था या जख्मी किया था तो वहां पर मकतूल के औलिया जो हैं वो किसास वगैरह ले सकते हैं, और अगर इसने माल लूटा था दूसरों का तो इस पर जमान भी आएगा। इस पर इश्काल होता है कि अभी आपने हमें बताया कि माल वापस करेगा तो तौबा होगी, जब माल वापस कर दिया तो फिर जमान का क्या माना है? तो जवाब दिया कि यह जमान वाली सूरत जो है उन फुकहा के कौल पर महमूल है जिनके नजदीक तौबा का दारोमदार माल के वापस करने पर नहीं है। जब तौबा का दारोमदार माल के वापस करने पर नहीं है तो तौबा वैसे भी हो जाएगी, लेकिन वो माल अगर डाकू के पास हलाक हो गया है तो डाकू को उसका जमान देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। किताब उसीयर असीयर उजम उसीरतिन वही तरीकतु फिल उमूर। किताब उसीयर भाई, साहिब हिदाया भी आपको बतलाएंगे कि सीयर जमा है सीरत की, और सीरत कहते हैं मामलात के अंदर जो किसी का तौर तरीका होता है उसको सीरत कहते हैं। मामलात के अंदर किसी का जो तौर तरीका हो उसको सीरत कहते हैं, लेकिन इस्तेलाह शरीयत के अंदर सीयर खास है। हुजूर अलैहि सलाम का जो जिहाद और गजावात के अंदर जो तरीका था उसको सीयर कहते हैं। भाई देखिए भाई, किताब सीयरी ये किताब है हुजूर अलैहि सलाम के जिहाद के तरीकों के बयान में। असीयर जम सीरतिन, सीयर जमा है सीरत की। वही तरीकतु फिल उमूरी, और ये मामलात के अंदर तरीके को कहते हैं, मामलात के अंदर जो तौर तरीका हो उसको सीरत कहते हैं। आप पढ़ते रहते हैं सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसके अंदर भी सीरतुन नबी के अंदर भी हुजूर अलैहि सलाम की जिंदगी के जो वाकयात हैं, अहवाल हैं और उनके जो तौर तरीके थे ये जिक्र किए जाते हैं सीरतुन नबी के अंदर। भाई तो कहते हैं असीयर जम सीरत, इन सीयर जमा है सीरत की। वही तरीका तो फिल उमूरी, और ये उमूर के अंदर जो तरीका होता है उसे कहते हैं। वफी शरई तख्तसु बिसीयरिन नबी अलैहि सलातु वस्सलाम फी मगाजीही, और शरीयत के अंदर ये सीयर खास है बिसीयरिन नबी अलैहि सलातु वस्सलाम, हुजूर अलैहि सलाम के जो तौर तरीके थे फी मगाजीही लड़ाइयों में, जो हुजूर अलैहि सलाम के तौर तरीके थे लड़ाइयों के अंदर यानी जिहाद में गजावात में। काल साहिब खुदूरी फरमाते हैं अल जिहाद फर्जुन अलल किफायती, कि जिहाद जो है वो फर्ज किफाया है। इदा काम बिही फरीकुम मिनन नासी सकत अनिल बाकीना, ये फर्ज किफाया की तारीफ कर रहे हैं। फर्ज किफाया किसे कहते हैं कि जिसे कुछ लोग भी अदा कर दें तो सबकी तरफ से अदा हो जाता है, जैसे नमाज जनाजा है। अगर एक शख्स की नमाज जनाजा कुछ लोग भी अदा कर दें तो सबकी तरफ से अदा हो जाता है, लेकिन अगर कोई भी अदा नहीं करता तो सारे लोग जो हैं वो गुनाहगार होंगे। भाई तो कहते हैं इदा काम अभी ही फरीकुम मिनन नासी, जब लोगों में से एक फरीक या यूं कहें लोगों में से एक गुरोह इसको कायम कर दे, सकत अनिल बाकीना, तो बाकियों से ये फर्ज किफाया साकित हो जाता है। अमल फर्जियतु फलिकौलिही ताला, तो फर्ज होना वो अल्लाह ताला के इस कौल की वजह से है कि अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वकातिलुल मुशरिकीन काफतन, और तुम लड़ाई करो तमाम मुशरिकीन से, कमा युकातिलूनकुम काफा, जैसे वो तुम सब से लड़ाई करते हैं। भाई साहिब कुदूरी ने बतलाया कि जिहाद फर्ज है, और फर्ज भी किस तरीके पर है, किफायत के तरीके पर है। तो अब फर्ज होने की दलील जिक्र कर रहे हैं साहिब हिदाया भाई, क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वकातिलुल मुशरिकीन काफतन, कि तुम तमाम मुशरिकीन से लड़ाई करो, कमा युकातिलूनकुम काफतन, जैसे वो तुम सब से लड़ाई करते हैं। काफतन याद रखो ये हाल है, ये मुशरिकीन से हाल है, और काफतन का माना है सब भाई यानी सारे के सारे। कहते हैं वकातिलुल मुशरिकीन काफतन, और तुम तमाम मुशरिकीन से लड़ाई करो, कमा युकातिलूनकुम काफतन, जैसे वो तुम सब से लड़ाई करते हैं, यानी जैसे वो तुम सब से लड़ाई करते हैं तुम भी उन सब से लड़ाई करो, किताल करो और उनसे जिहाद करो। तो देखो यहां अमर आया, और अमर किस लिए आता है, वजूब के लिए आता है। मालूम हुआ जिहाद फर्ज है। भाई याद रखो यहां पर मुहाशी बड़ी कीमती बात जिक्र फरमाते हैं, वो भी सुन लीजिए भाई। फरमाते हैं कि इब्तिदाए इस्लाम के अंदर जब हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैगंबर बनाकर भेजा तो इब्तिदा के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन मुशरिकीन से एराज करने और इनसे दरगुजर करने का हुक्म दिया गया था कि इनसे बहस मुबाहसा करने की जरूरत नहीं, इनसे लड़ने की जरूरत नहीं, ये जो कुछ भी करें आप दरगुजर से काम लीजिए और इनसे एराज कीजिए। चुनांचे कुरान में अल्लाह फरमाते हैं फसफहिस सफहल जमीला, सफाहा यसफहु के माने होते हैं दरगुजर करना, मुआफ करना। इब्तिदा में हुजूर अलैहिस्सलाम को हुक्म था फसफहिस सफहल जमीला कि आप इनसे अच्छे तरीके से दरगुजर कीजिए, ये आपको तकलीफ देते हैं आप अच्छे तरीके से दरगुजर कीजिए। और नीज इसी तरह दूसरी जगह अल्लाह फरमाते हैं वह आरिज अनिल मुशरिकीना, और मुशरिकीन से एराज कीजिए, मुशरिकीन से एराज कीजिए, रुख फेर लीजिए, यानी अगर ये आपको तकलीफ देते हैं तो आप इनका मुकाबला न करें। तो ये पहला हुक्म था कि हुजूर अलैहिस्सलाम को हुक्म था कि मुशरिकीन से दरगुजर करें और एराज करें। और फिर कुछ अरसे के बाद दूसरा हुक्म आया कि इन मुशरिकीन से आप बहस मुबाहसा कर सकते हैं लेकिन अच्छे तरीके से बहस और मुबाहसा करो इनके साथ। चुनांचे कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, और इनके साथ मुबाहसा करो अच्छे तरीके से, वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, यानी अच्छे तरीके से इनसे बहस करो, इनको वाज और नसीहत करो भाई। और फिर उसके बाद इनके साथ लड़ाई का हुक्म आ गया। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं फइन कातलूकुम फक्तुलूहुम, अगर ये तुम्हारे साथ लड़ाई करें तो तुम भी इनके साथ लड़ाई करो जी। अगर ये तुम्हारे साथ लड़ाई करें यानी अगर इनकी तरफ से लड़ाई की इब्तिदा हो फिर तुम भी लड़ाई कर सकते हो जी। तो ये तीसरा हुक्म आ गया, मालूम हुआ तुम लड़ाई की इब्तिदा नहीं कर सकते, हां अगर वो लड़ाई की इब्तिदा करें तो तुम्हें उनका मुकाबला करने की इजाजत है भाई। तो ये तीसरा मरहला आ गया। और फिर उसके बाद जो है इब्तिदाए जिहाद और इब्तिदाए लड़ाई की भी इजाजत भी दी गई। चुनांचे कुरान में अल्लाह फरमाते हैं फक्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, कि बस तुम मुशरिकीन को कत्ल करो जहां भी तुम उनको पाओ। तो यहां मालूम हुआ अब लड़ाई की इब्तिदा मुसलमान भी कर सकते हैं। और इसी तरह दूसरी जगह अल्लाह फरमाते हैं वकातिलुल मुशरिकीन काफतन कमा युकातिलूनकुम काफतन, कि तुम तमाम मुशरिकीन से लड़ाई करो जैसे वो तुम सबसे लड़ाई करते हैं। वालमु अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, और जान लो कि अल्लाह मुत्तकियों के साथ हैं जी। अल्लाह मुत्तकियों के साथ हैं भाई। तो मालूम हुआ ये चौथा दर्जा आ गया। पहला दर्जा क्या था कि इनसे एराज करें दरगुजर करें। दूसरा हुक्म फिर यह आया कि इनके वो अच्छे तरीके से नसीहत करें, इनके साथ अच्छे तरीके से बहस आप कर सकते हैं। और फिर तीसरा हुक्म आया कि इब्तिदा तो लड़ाई की आप नहीं कर सकते, हां अगर ये लड़ाई करें तो आप फिर इनका जवाब दे सकते हैं। और फिर चौथा हुक्म आ गया कि अब मुसलमानों को इब्तिदाए जिहाद की भी इजाजत दे दी गई भाई। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आइए फिर मतन के अंदर देखिए भाई। तो कहते हैं अमल फर्जियत फली कौली ही ताला, तो जिहाद का फर्ज होना वो अल्लाह ताला के इस कौल की वजह से है। वकातिलुल मुशरिकीन काफतन, कि तुम तमाम मुशरिकीन से लड़ाई करो। कमा युकातिलूनकुम काफा, जैसे वो तुम सबसे लड़ाई करते हैं। वली कौली अलैहि सलातु वस्सलाम, और नीज फर्ज होने की जो दलील है वो हुजूर अलैहि सलाम का ये कौल है कि आपने फरमाया अल जिहाद माज़िन इला यौमिल क़ियामती, कि जिहाद जारी रहेगा क्यामत के दिन तक। बात समझ में आ गई, यहां तक हदीस थी अल जिहाद माज़िन इला यौमिल क़ियामत, जिहाद जो है क्यामत के दिन तक जारी रहेगा। वह अराद बिही फर्जम बाकियन, यहां से साहिब हिदायत तफसीर कर रहे हैं हदीस की, कहते हैं वह अरादा बिही, और इसके जरिए इरादा फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्जन बाकियन, ऐसे फर्ज का जो बाकी रहने वाला हो। ये जो हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि जिहाद क्यामत तक बाकी रहेगा, माना यह था कि क्यामत तक फर्ज होकर बाकी रहेगा। और याद रखना यह फुकहाए अहनाफ का मजहब है कि जिहाद जो है वो फर्ज किफाया है, जबकि और बास फुकहा फरमाते हैं कि जिहाद फर्ज किफाया नहीं बल्कि ततव्वु है, यानी नफल है जी। ये नफल है। तो कहते हैं वह अरादा बिही फर्जन बाकियन, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जरिए इरादा फरमाया ऐसे फर्ज का जो बाकी रहने वाला हो। वह हुआ फर्जुन अलल किफायती, और वो फर्ज किफाया है, यानी जिहाद बतौर फर्ज किफाया के क्यामत तक बाकी रहेगा। तो कहते हैं वह हुआ फर्जुन अलल किफाया थी, और वह फर्ज किफाया है। लिअन्नहु मा फुरिज़ा लिऐनिही इज़ हुआ इफ़सादुन फी नफ़सिही। यहां से साहिब हिदाया अकली दलील भी जिक्र फरमा रहे हैं कि जिहाद फर्ज ऐन नहीं है बल्कि फर्ज किफाया है। फर्ज ऐन वो चीज जो अपनी जात के एतबार से ही फर्ज है, जैसे नमाज रोजा वगैरह, और यह हर एक पर फर्ज है। जबकि फर्ज किफाया आपको मैंने बतलाया कि वो कुछ मुसलमान भी अदा कर दें तो वो सब की तरफ से अदा हो जाता है। तो यहां पर आप साहिब हिदाया अकली दलील जिक्र फरमा रहे हैं कि ये जो जिहाद को अल्लाह ने फर्ज करार दिया है, ये अपनी जात के एतबार से फर्ज करार नहीं दिया, क्योंकि जिहाद की अपनी जात को देखा जाए तो ये अपनी जात के एतबार से इफसाद है, यानी फसाद मचाना है। इसकी वजह से देखो कत्लो गारत होगी, शहर उजड़ जाएंगे, औरतें बच्चे मर्द वगैरह इसके अंदर कत्ल होंगे। तो अपनी जात के एतबार से देखा जाए तो जिहाद जो है वो इफसाद है, फसाद मचाना है, फसाद फैलाना है। लेकिन इसको शरीयत ने फर्ज करार दिया है कि इसकी वजह से एलाए कलिमतुल्लाह होगा, अल्लाह का कलिमा बुलंद होगा, दीन इस्लाम को कुव्वत हासिल होगी और मुशरिकीन का शर दफा होगा। तो मालूम हुआ ये जो जिहाद को फर्ज करार दिया है शरीयत ने, वो जिहाद की जात की वजह से नहीं है बल्कि इसकी वजह से दीन इस्लाम ताकतवर होगा और मुशरिकीन का शर दफा होगा, इस वजह से फर्ज करार दिया गया है। मालूम हुआ ये फर्ज ले आईनी ही नहीं बल्कि ये फर्ज ले गैरी ही है। फर्ज ले आईनी ही नहीं यानी अपनी जात के एतबार से फर्ज नहीं है, अपनी जात के एतबार से तो यह इफसाद का नाम है, बल्कि यह फर्ज ली गैरी ही है, गैर की वजह से फर्ज है कि इसकी वजह से अल्लाह का दीन मजबूत होगा और मुशिकीन का शर दफा होगा। तो कहते हैं लि अन्नहु मा फुरिज़ा लि आईनिही, इसलिए क्योंकि जिहाद जो है इसको अपनी जात की वजह से फर्ज नहीं किया गया। इस हुआ इफसाद उन फी नफ्सिही, इसलिए क्योंकि ये अपनी जात के एतबार से फसाद मचाना है, या यूं कहें कि ये जिहाद जो है अपनी जात के एतबार से फसाद फैलाना है। व इन नमा फुरिज़ा लि इअज़ाज़ि दीनिल्लाहि व दफ़इ शर्रि अनिल इबाद। अअज़्ज़ युइज़्ज़ु, इअज़ाज़ का माना है मजबूत और ताकतवर बनाना। कहते व इन नमा फुरिज़ा, और जिहाद को तो इसीलिए फर्ज किया गया है लि इअज़ाज़ि दीनिल्लाहि, ताकि अल्लाह का दीन ताकतवर हो, व दफ़इ शर्रि अनिल इबादी, और ताकि अल्लाह के बंदों से मुशरिकीन का शर दूर हो जाए। बात समझ में आ गई, फिर तर्जमा देख लीजिए। कहते हैं वह इन्नमा फुरिज़ा लि इअज़ाज़ि दीनिल्लाहि व दफ़इ शर्रि अनिल इबादी, और जिहाद को फर्ज किया गया है अल्लाह के दीन को ताकतवर बनाने और बंदों से शर को दफा करने की वजह से इसको फर्ज किया गया है। फ़इदा हसल अल मकसूद बिल बाजी सकता अनिल बाकीना, तो जब यह मकसद बाज मुसलमानों के जरिए हासिल हो जाए तो बाकी मुसलमानों से यह फर्ज साकित हो जाएगा। यह माना है फ़इदा हसल अल मकसूद बिल बाजी, जब यह मकसद बाज मुसलमानों के जरिए हासिल हो जाए, सकता अनिल बाकीना, तो बाकियों से यह फर्ज साकित हो जाएगा। का सलात इल जनाजति वरद सलामी, जैसे कि नमाज जनाजा है और सलाम का जवाब देना है। भाई नमाज जनाजा आप जानते हैं फर्ज किफाया है, अगर कुछ मुसलमान भी नमाज जनाजा किसी की अदा कर दें तो यह सब की तरफ से फर्ज अदा हो जाता है, और अगर कोई भी नमाज जनाजा अदा नहीं करता तो तमाम मुसलमान गुनाहगार होंगे। इसी तरह याद रखो, अगर एक मजलिस के अंदर कुछ लोग बैठे हैं और एक आने वाला या पास से गुजरने वाला सलाम करता है, तो आप जानते हैं सलाम का जवाब देना वाजिब है भाई। तो जब मजलिस पर किसी ने सलाम किया है तो ये वाजिब अलल किफाया है, मजलिस में से कुछ लोग भी सलाम का जवाब दे देंगे तो सबकी तरफ से जवाब हो गया। लेकिन अगर कोई एक भी सलाम का जवाब नहीं देता तो सारी मजलिस वाले गुनाहगार होंगे। तो ये माना है का सलातिल जनाजती, जैसे कि नमाज जनाजा है, वरद दिस सलामी, और जैसे कि सलाम का जवाब देना है। फैलम यकुम बिही अहदुन, अगर किसी एक ने भी जिहाद को कायम नहीं किया, असीमा जमी उन्नासी, असीमा या असमु के माने गुनाहगार होना, असीमा तो गुनाहगार होंगे, जमी उन्नासी सारे लोग, बितर की ही इस जिहाद को छोड़ने की वजह से, ले अनल वजूब अलल कुल्ली, इसलिए क्योंकि इसका वजूब सब पर है, इसका वजूब सब पर है, लिहाजा कोई एक जमात जरूर होनी चाहिए जो इस फर्ज किफाया को सब की तरफ से अदा करे। आगे अब दूसरी दलील जिक्र कर रहे हैं, वली अन फिश्तिगाल कुल्ली बिही कत अमादत जिहाद मीनल कुराई वसिलाह। दूसरी दलील साहिब हिदायत यह जिक्र करेंगे, अगर सारे लोग ही जिहाद के अंदर मशगूल हो जाए, सारे लोग ही जिहाद के अंदर मशगूल हो जाए तो इसकी वजह से खुद जिहाद ही खत्म हो जाएगा जी। इसकी वजह से खुद जिहाद ही खत्म हो जाएगा। वजह यह कि जिहाद के लिए असबाब चाहिए, असलहा चाहिए, घोड़े चाहिए और हर किस्म की जरूरत की चीजें चाहिए। तो अगर तमाम लोग जिहाद में मसरूफ हो जाएंगे तो जिहाद के असबाब पीछे कौन तैयार करेगा, क्योंकि सारे लोग तो लड़ाई में मशगूल हैं। तो जब असबाब नहीं होंगे तो यह तो खुद कहां तक पहुंचा देगा, जिहाद के खत्म होने तक पहुंचा देगा। लिहाजा इसीलिए जिहाद तमाम मुसलमानों पर फर्ज नहीं है बल्कि यह फर्ज किफाया है। एक जमात भी अगर यह फर्ज अदा करे तो सबकी तरफ से अदा हो जाएगा। तो कहते हैं वली अन फिश्तिगाल कुल्ली बिही, और इस वजह से कि सारे लोगों का इस जिहाद के अंदर मशगूल हो जाना, कत अमादत जिहाद मिनल कुराई वसिलाह। कुरा कहते हैं, याद रखो कुरा भाई, कुरा ये घोड़ों और असलहे के मजमुए को कहते हैं, यानी वो जो असबाब जिहाद होते हैं उनको क्या कहते हैं, कुरा। और आगे सिलह का लफ्ज आ रहा है, सिलह असलहे को कहते हैं। तो कुरा का माना भी घोड़े और असलहा, और आगे सिलह का खुद जिक्र भी आ रहा है, लिहाजा कुरा का माना हम यहां सिर्फ घोड़ों के कर लेंगे। कुरा का माना घोड़े और खुद आगे असलहे का जिक्र आगे आ रहा है। तो कहते हैं वली अन फिश्तिगाल कुल्ली बिही, और नीज इसलिए क्योंकि अगर सारे लोग जिहाद के अंदर मशगूल हो जाएंगे तो इसके अंदर कत अमादत जिहादी, तो इसके अंदर जिहाद के मादे को काटना है कि जिहाद का मादा यानी जिहाद के असबाब ही खत्म हो जाएंगे। आगे मीन के जरिए बयान कर रहे हैं कि जिहाद का मादा क्या चीज है, कहते मीनल कुराई वसिलाह, यानी कि घोड़े और असलहा वगैरह, यानी कि घोड़े और असलहा, ये जो जिहाद का मादा है ये ही खत्म हो जाएगा अगर सारे जिहाद में मशगूल हो गए। तो फयजिबु अलल किफायती, तो ये जिहाद वाजिब होगा किफायत के तरीके पर, क्योंकि अगर सारों पर फर्ज आयन करार दे दिया जाए फिर तो मादा जिहाद यानी असबाब जिहाद ही खत्म हो जाएंगे। इल्ला अन यकूना नफीर आम मन, मगर यह कि नफीर आम हो गई, नफीर आम कहते हैं आम लोगों का जिहाद के लिए निकलना। नफीर आम किसे कहते हैं, आम लोगों का यानी सब लोगों का जिहाद के लिए निकलना। भाई याद रखो जिहाद वैसे तो फर्ज किफाया है लेकिन बाज औकात जिहाद फर्ज ऐन भी हो जाता है। वो इस तरह मसलन एक मकाम पर दुश्मन ने हमला कर दिया, अब उस इलाके वाले मुसलमान उनका मुकाबला कर रहे हैं लेकिन वो मुसलमान कमजोर हैं, वो इनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो फिर आसपास वाले इलाकों के जो मुसलमान हैं उन पर भी जिहाद फर्ज ऐन हो जाएगा, उनको उनकी मदद के लिए आना पड़ेगा, नहीं तो गुनाहगार होंगे और आखिरत में सख्त मुआखजा होगा। फिर अगर साथ वाले मुसलमान भी उनकी मदद के लिए काफी नहीं होते तो उनसे आगे और जो मुसलमान रहने वाले हैं उन पर भी फर्ज ऐन हो जाएगा। अगर वो भी इनका मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते तो उससे आगे और जो मुसलमान रहने वाले हैं उन पर भी ये जिहाद फर्ज आयन हो जाएगा, यहां तक के होते होते सारी दुनिया के मुसलमानों पर फर्ज आयन हो जाएगा। अगर वो मुसलमान इनका मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते तो फिर सारे जहान वाले मुसलमानों पर इनके मुकाबले के लिए निकलना फर्ज हो जाएगा। भाई तो नफीर आम कहते हैं आम लोगों का दुश्मन की लड़ाई के लिए निकलना। तो कहते हैं इल्ला अन यकून नफीर आम मन, मगर यह कि नफीर आम हो, नफीर आम हो। भाई पहले बतलाया जिहाद फर्ज किफाया है लेकिन अगर नफीर आम हो जाए फिर फर्ज ऐन हो जाएगा। यह माना है इल्ला अन यकून नफीर आम मन, मगर यह कि नफीर आम हो। فحین اذن یصیر من فروز الاعیانی، تو اس وقت یہ جہاد جو ہے فروز اعیان میں سے بن جائے گا، یعنی یہ بھی فرض عین ہو جائے گا، لقوله تعالی اللہ تعالی کے اس قول کی وجہ سے، انفروا خفافا وثقالا، اللہ فرماتے ہیں کہ دشمن سے جہاد لڑائی کے لیے نکلو، انفروا خفافا وثقالا، خفاف جمع ہے خفیف کی، خفیف کا معنی ہے ہلکا ہلکا، اور ثقال جمع ہے ثقیل کی، ثقیل کا معنی ہے بوجھل بھائی، وزنی بھاری، اس کو کیا کہتے ہیں ثقیل بھائی، تو کہتے ہیں کہ پھر فرض عین ہو جائے گا، لقوله تعالی اللہ تعالی کے اس قول کی وجہ سے، انفروا خفافا وثقالا، کہ نکلو تم لوگ ہلکے ہو یا بوجھل، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، ہر صورت میں جہاد کے لیے نکلو، اور اس کے اندر سب لوگوں کو نکلنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نفیر عام ہے بھائی، نفیر عام کے اندر سب پر جہاد کے لیے نکلنا فرض ہوگا، اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہاں تو کوئی نفیر عام کی قید نہیں ہے قرآن کے اندر، یہاں تو کوئی نفیر عام کی بات نہیں، اللہ فرما رہے ان فرو خفاف و سقالا، کہ تم جہاد کے لیے نکلو ہلکے ہو یا بوجھل ہو، تو اس سے معلوم ہوا سب پر جہاد فرض ہے، لیکن آپ اس کو خاص کر رہے ہیں نفیر عام کے ساتھ، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر نکلے، صحابہ کو جہاد پر بھیجا، لیکن کچھ لوگ پھر پیچھے مدینہ میں بھی باقی رہتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ جہاد سب پر فرض نہیں، اگر سب پر فرض ہوتا تو سب نکلتے، بات سمجھ میں آ گئی، معلوم ہوا یہ جو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر صورت میں نکلو چاہے ہلکے ہو یا بوجھل، یہ نفیر عام کا حکم ہے، اور پھر یہ ہلکے ہو یا بوجھل اس سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے مختلف معانی ذکر کیے ہیں کہ جب تم ہلکے ہو یعنی سوار ہو، یا بوجھل ہو یعنی پیدل ہو، بھئی سوار جو ہے اس کے لیے جانا بڑا آسان ہے، اور جو پیدل ہے اس کے لیے تو مسافت طے کرنا بڑا مشکل کام ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں چاہے تم ہلکے ہو یعنی سواری پر ہو، یا بوجھل ہو یعنی پیدل ہو، ہر حال میں جہاد کے لیے نکلو، اسی طرح خفاف کا معنی ذکر کیا کہ جب تم جوان ہو، جب جوان ہوتا ہے تو انسان چاقو چوبند ہوتا ہے، قوتیں عروج پر ہوتی ہیں، یعنی وہ بڑا ہلکا پھلکا ہے، آرام سے جا سکتا ہے، اور جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اب اس کے لیے جانا اور سفر کرنا بڑی مشقت کا باعث ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ جہاد کے لیے نکلو خفافا وثقالا، چاہے تم جوان ہو یا بوڑھے ہو بھائی، اور اسی طرح اس خفافا وثقالا کا معنی جو ہے تندرست اور مریض کے بھی کیے گئے، کہ تم جہاد کے لیے نکلو چاہے تم ہلکے ہو یعنی تندرست ہو، اور ثقالا یا تم بوجھل ہو یعنی بیمار ہو، یا اسی طرح خفافا وثقالا کا معنی مالدار اور فقیر کے بھی کیے گئے، کہ تم جہاد کے لیے نکلو جب تم ہلکے ہو یعنی جب تم مالدار ہو، وثقالا اور جب تم بوجھل ہو یعنی فقیر ہو بھائی، مالدار ہے وہ تو ہلکا پھلکا ہے، اس کے ذہن پر معاش کی فکر نہیں، اور فقیر جو ہے وہ تو بوجھل ہے کہ اس کے سر پر معاش کی فکر بھی سوار ہے، کہ خود بھی کھانا ہے اپنے گھر والوں کو بھی کھلانا ہے بھائی، تو کہتے ہیں لقوله تعالی اللہ تعالیٰ کی اس قول کی وجہ سے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے انفروا خفافا وثقالا، کہ تم لوگ نکلو چاہے ہلکے ہو یا بوجھل ہو، الآیہ ایل آیت معروفت، ان کی آیت معروف ہے، ہم نے کچھ حصہ پڑھ دیا، یا اقرأ الآیت کہ یہ آیت آپ پڑھ لیجئے، ہم نے کچھ حصہ ذکر کر دیا، اور پھر یہ بھی یاد رکھنا جب نفیر عام ہو جائے، جب جہاد سب پر فرض ہو جائے، تو اس صورت کے اندر بھی علماء فرماتے ہیں یہ نہیں کہ سارے ہی لوگ جہاد کے لیے نکل جائیں گے، نہیں، گروہ در گروہ جہاد کے لیے نکلیں گے، کچھ لوگ پیچھے رہیں گے، کچھ جہاد کے لیے چلے جائیں گے، پھر وہ آئیں گے تو دوسرے چلے جائیں گے، جس طرح حج کے اندر کچھ لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، کچھ پیچھے ہوتے ہیں، پھر اگلے سال اور حج کے لیے جاتے ہیں، تو اس طرح یہاں پر بھی گروہ در گروہ لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے، لیکن سارے لوگ ہی نکل کر چلے جائیں ایسا نہیں، ورنہ تو پھر جہاد کا مادہ ہی ختم ہو جائے گا، اسباب ہی نہیں رہیں گے پیچھے جہاد کے بھائی، تو کچھ لوگ تو تجارت وغیرہ میں مصروف رہیں گے، لیکن ہے سب پر فرض، باری باری جائیں اور شرکت کرتے چلے جائیں اس جہاد کے اندر بھائی، بات سمجھ میں آ گئی، आगे देखिए, वकाल फिल जामिया सगीरी, और इमाम मोहम्मद रहमहुल्ला जामे सगीर में फरमाते हैं, अल जिहाद वाजिबुन, कि जिहाद जो है वाजिब है, फर्ज है, इल्ला अन अल मुस्लिमी नफी साअतिन, मगर मुसलमान इसके अंदर गुंजाइश में है, मुसलमान जिहाद के अंदर वुसअत में है, हत्ता युहताज इलैहिम, यहां तक कि उनकी इहतियाज हो जाए, उनकी जरूरत पेश आ जाए। भाई देखिए, पीछे जो इबारत जिक्र थी वो कुदूरी की जिक्र थी, और साहिब कुदूरी ने भी बतलाया कि जिहाद जो है वो फर्ज किफाया है भाई, और अगर नफीरे आम हो जाए फिर सब पर जिहाद फर्ज हो जाएगा। अब साहिब हिदाया जामे सगीर की इबारत से भी बतलाना चाहते हैं कि जामे सगीर में भी यही बात जिक्र की है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने, तो कहते हैं कि जामे सगीर के अंदर इमाम मोहम्मद रमला फरमाते हैं, अल जिहाद वाजिब, उनके जिहाद वाजिब है, इल्ला अन्नल मुस्लिमीन फी साअतिन, मगर यह कि मुसलमान इसके सिलसिले में गुंजाइश में है, वो साथ में है। इससे क्या मालूम हुआ कि यह फर्ज किफाया है, फर्ज ऐन नहीं, मुसलमानों के लिए इसके अंदर गुंजाइश है। बात समझ में आ गई। और आगे फरमाया, हत्ता युहताज इलैहिम, यहां तक कि आम मुसलमानों की जरूरत पेश आ जाए। इससे क्या पता चला, फर्ज ऐन होने का, यानी नफीर आम के अंदर भाई। तो कहते हैं, फअव्वलु हादल कलामी इशारतुन इलल वुजूबि अलल किफायती, तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का यह जो कलाम है इसका इब्तदाई हिस्सा जो है वो इशारा कर रहा है इस बात की तरफ कि इस जिहाद का वजूब किफायत के तरीके पर है। वह आखिरहु इलन नफीर इलामी, और इस कलाम का आखिर जो है वह नफीर आम की तरफ इशारा कर रहा है। वहां दाली अन अल मकसूद इंदा दाली कला यतहसल इल्ला बिइकामतिल कुल्ली, कहते हैं वहादा, और ये इसलिए भाई नफीर आम के वक्त सब पर जिहाद फर्ज हो जाता है, उसकी वजह क्या है, कहते हैं वहादा, और ये इस वजह से, लिअन्न अल मकसूद इंदा जालिका, इसलिए क्योंकि नफीर आम के वक्त जो मकसूद होता है, ला यतहसलु, वो हासिल नहीं होता, इल्ला बि इकामतिल कुल्ली, मगर सब के अदा करने से। जब सारे ही जिहाद करेंगे फिर ही दुश्मन का शर दफा होगा, वरना तो उनकी ताकत ज्यादा है भाई। तो ये माना है वहाजा, और ये जो नफीर आम में सब पर जिहाद फर्ज हो जाता है वो इसलिए है, लिअन्न अल मकसूद इंदा ज़ालिका ला यतहसलु इल्ला बिइकामतिल कुल्ली, क्योंकि नफीर आम के वक्त मकसद जो है वो हासिल नहीं होता मगर सब के जिहाद कायम करने से ही। फयुफ्तरजु अलल कुल्ली, तो सब पर फर्ज होगा, इफ्तराजा यफ्तरिजु के माने हैं फर्ज करना, फयुफ्तरजु अलल कुल्ली, तो जिहाद फर्ज होगा सब पर। वकितालुल कुफारि वाजिबुन व इल्लम यब्दउ लिल उमूमाती, और कुफार से लड़ाई जो है मुसलमानों पर वाजिब है, व इल्लम यब्दउ, अगरचे वो इब्तिदा न करें, लिल उमूमाती, उमूमात की वजह से कि कुरान और हदीस जो है सब के अंदर मुतलकन जिहाद का हुक्म दिया गया है, उनमें यह जिक्र नहीं है कि वो हमला करें तो फिर तुमने मुकाबला करना है, बल्कि मुतलकन हर जगह जिहाद का हुक्म दिया गया है। मालूम हुआ कुफार के साथ लड़ाई वाजिब है अगरचे वो इब्तिदा न करें। यह माना है वकिताल कुफार वाजिब व इल्लम यब्दउ, मालूम हुआ कुफार के साथ लड़ाई वाजिब है अगरचे वो इब्तिदा न करें, लिल उमूमाती, उमूमात की वजह से, नुसूस के अंदर आम हुक्म है भाई। वला यजिबुल जिहाद अला सबीयिन, और जिहाद वाजिब नहीं है बच्चे पर, लिअन्न सिबा मज़िन्नतल मरहमती, लिअन्न सिबा सौद के साथ है, सिबा बचपने को कहते हैं, मज़िन्ना, मज़िन्ना ज़ा के कसरा के साथ है, मज़िन्ना जाय गुमान, जाय गुमान यानी जहां किसी चीज के होने का गुमान हो उसको क्या कहते हैं, मज़िन्ना। मरहमा, मरहमा कहते हैं शफकत करना, तरस खाना, मेहरबानी करना, कहते हैं बच्चे पर जिहाद फर्ज नहीं, लिअन नसीबा मज़िन्नतल मरहमती, इसलिए क्योंकि बचपना जो है वो तो शफकत की जाय गुमान है, शफकत की जाय गुमान है यानी शफकत का महल है, शफकत का महल है, बचपना जो है वो शफकत का महल है, यानी बच्चे शफकत का महल हैं। अगर इनको जिहाद में शरीक करेंगे तो जिहाद के अंदर तो कत्लो कताल होता है भाई। तो कहते हैं लिअन नसीबा मजीन्नत अल मरहमती, इसलिए क्योंकि बचपना जो है वो शफकत का महल है। वला अब्दिन वला मरातिन, और इसी तरह जिहाद वाजिब नहीं है न गुलाम पर और न औरत पर। लितकद्दुमी हक्किल मौला वज़्ज़ौजी, बवजह मुकद्दम होने आका और खावंद के हक के। आका और खावंद का हक शरई हक पर मुकद्दम है भाई, और वैसे ही नहीं मुकद्दम, खुद शरीयत ने इनके हक को मुकद्दम करार दिया है, अल्लाह ही ने इनके हक को मुकद्दम करार दिया है। तो कहते हैं गुलाम और औरत पर जिहाद वाजिब नहीं है। लि तकद्दुमी हक इल्मा व ज़ौजी, बवजह आका और खावन के हक के मुकद्दम होने के। वला आमा, और अंधे पर भी जिहाद वाजिब नहीं। वला मुकअदिन, मुकअद कहते हैं अपाहज भाई, यानी वो शख्स जो टांगों से माजूर है, चल फिर नहीं सकता। कहते हैं वला मुकअदिन, और जिहाद जो है अपाहज पर भी फर्ज नहीं है। वला अकता, अकता कहते हैं जिसके हाथ कटे हुए हों। वला अकता, और वो शख्स जिसके हाथ कटे हुए हों उस पर भी जिहाद फर्ज नहीं है। वला अकता, ये गैर मुनसरिफ है भाई, ये भी मजरूर है लेकिन इसका जर आता ही फतहा की सूरत में है। तवज्जो है, पीछे सब मजरूर गुजर रहे हैं ना, कि वला यजिबुल जिहादु अला सबीयिन वला अब्दिन वला मरातिन वला आमा वला मुकादिन वला अकता, तो जिसके हाथ कटे हों उस पर भी जिहाद फर्ज नहीं है। ले इज्जिहिम, इनके आजिज होने की वजह से कि ये सब जिहाद से आजिज हैं। फइन हजमल आदू वो अला बलदिन, हजमा यह जुमू के माने हमला करना। फइन हजमल आदू वो अला बलदिन, अगर दुश्मन ने हमला कर दिया किसी शहर पर। वजबा अला जमी इन्ना से दफू, तो वाजिब है तमाम लोगों पर उनको दफा करना, उनको दूर करना, तमाम लोगों पर वाजिब है। तखरुजुल मरअतु बिगैरी इज़्नि ज़ौजिहा, औरत निकलेगी अपने खावंद की इजाजत के बगैर। वल अब्दु बिगैरी इज़्निल मौला, और गुलाम अपने आका की इजाजत के बगैर निकलेगा। लिअन्नहु सारा फर्ज ऐनिन, इसलिए क्योंकि जिहाद फर्ज ऐन हो गया है, दुश्मन ने हमला किया है तो उस शहर वाले सब लोगों पर फर्ज ऐन हो गया। तो यह माना है लिअन्नहु सारा फर्ज ऐनिन, इसलिए क्योंकि जिहाद फर्ज ऐन हो गया है। वह मिल्कुल यमीनी व रिक्कुन निकाही, और मिलके यमीन जो है गुलाम के अंदर आका को मिलके यमीन होती है और बीवी के अंदर मिलके निकाह होती है। तो कहते हैं वह मिल्कुल यमीनी, और मिलके यमीन जो है गुलाम के अंदर। वह रिक्कुन निकाही, रिक कहते हैं गुलामी को, वह रिक्कुन निकाही, और निकाह की जो गुलामी है भाई, देखिए बीवी जो है उसके साथ खावंद का निकाह हुआ है, वो कोई खावंद की गुलाम नहीं, लेकिन बहरहाल निकाह की वजह से औरत पर कुछ पाबंदियां आ जाती हैं, तो यह निकाह भी बाज एतबार से देखा जाए तो यह गुलामी के मिसल है। तो कहते हैं वह मिल्कुल यमीन व रिक्कुन निकाही, और मिलके यमीन जो है यानी गुलाम में, व रिक्कुन निकाही, और निकाह की जो गुलामी है यानी बीवी में। ला यज़हरु फी हक फुरूज़िल आयानी, ये जाहिर नहीं होती फुरूज आयान के हक में, फर्ज ऐन के सिलसिले में ये गुलाम की गुलामी और बीवी के मिलके निकाह वो जाहिर नहीं होती, इन पर वो फर्ज ऐन जरूरी होता है। जैसे नमाज और रोजा, गुलाम बेशक गुलाम है लेकिन नमाज रोजा उस पर फर्ज है, औरत का बेशक निकाह हुआ है लेकिन नमाज और रोजा उस पर फर्ज है। तो फर्ज ऐन के सिलसिले में न ये मिलके यमीन रुकावट बन सकती है और न मिलके निकाह भाई। तो कहते हैं वह मिल्कुल यमीन व रिक्कुन निकाही, और मिलके यमीन जो है और निकाह की गुलामी जो है। ला यज़हरु फी हक फुरूज़िल आयानी, वो फर्ज ऐन के हक में जाहिर नहीं होते। कमा फी सलाति व सौमी, जैसे कि नमाज और रोजे में है। बिखिलाफ मा क़ब्ल नफीरी, हां बखिलाफ नफीर से पहले, कि उससे पहले जिहाद क्या है, फर्ज किफाया है, तो औरत और गुलाम पर तो फर्ज ही नहीं है, लिहाजा उस सूरत में फिर वो जिहाद पर नहीं जाएंगे भाई। तो कहते हैं बिखिलाफ मा क़ब्ल नफीरी, बखिलाफ नफीर आम से पहले। लिअन्ना बिगैरिहिमा मक़नअन, लिअन्ना बिगैरिहिमा मक़नअन, इसलिए क्योंकि इनके बगैर भी मक़नअन किफायत होगी। मक़ना का क्या माना, किफायत। जब जिहाद फर्ज किफाया है, मालूम हुआ तमाम लोगों के जाने की जरूरत नहीं, तो लिहाजा तो गुलाम और औरत जो है इन पर तो जिहाद वाजिब ही नहीं, तो फिर ये भी नहीं जाएंगे। तो ये माना है ले अन नबी गैर ही मां मकनान, इसलिए क्योंकि इनके बगैर भी किफायत होगी। फला जरूरत इला इबाल हकिल मौला व जौजी, लिहाजा कोई जरूरत नहीं है कि आका और खावंद के हक को बातिल किया जाए। आगे देखिए वयुक रहुल जोलु मादाम अलिल मुस्लिमी नफे उन, जोल कहते हैं उजरत और मजदूरी को। एक आदमी आपके पास काम करता है और फिर आप उसको जो पैसे देते हैं ये क्या है, उजरत और मजदूरी है, इसको अरबी में जोल कहते हैं। और यहां एक लफ्ज आ रहा है फे उन, याद रखो माले फै भाई वो माल है जो मुसलमानों को लड़ाई के बगैर हासिल हो, उसको माले फै कहते हैं। मसलन जिम्मी जो है दारुल इस्लाम में रहते हैं वो सालाना टैक्स देते हैं जिसे जिजिया कहते हैं। ये जो जिजिया मुसलमानों को हासिल होता है ये बगैर लड़ाई के हासिल हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, माले फै भाई। या इसी तरह जिम्मियों की जो जमीनें हैं उनसे खराज वसूल किया जाता है, उनकी जमीनों से खराज वसूल किया जाता है, तो यह भी देखो ऐसा माल है जो बगैर लड़ाई के मुसलमानों को हासिल हो रहा है, इसको माले फै कहते हैं। फा या और हमजा फै उन भाई। और अगर लड़ाई से जो माल हासिल हो उसको माले गनीमत कहते हैं भाई। तो कहते हैं वयुक रहुल जोलु मादाम अलिल मुस्लिमी नफे उन, और मकरू है उजरत जब तक मुसलमानों के लिए माले फै है भाई। यहां से आपको बतलाएंगे कि जिहाद के लिए हाकिम आम मुसलमानों पर टैक्स लगा दे ये मकरूह है जी। जिहाद की जरूरत पेश आ गई, कुछ मुसलमान लड़ने के लिए जा रहे हैं और जो पीछे बाकी हैं हाकिम उन पर टैक्स लगा देता है कि इतने इतने पैसे अदा करो ताकि लश्कर की मदद हो जाए, तो कहते हैं ये मकरूह है भाई। तो कहते हैं वयुक रहुल जोलू, और मकरू है टैक्स लगाना, मा दामल इल मुस्लिमी नफे उन, जब तक मुसलमानों के लिए माले फै मौजूद है। ले अन्नहु युश्बिहुल अजरा, इसलिए क्योंकि ये उजरत के मुशाबे है। ये तो किसके मुशाबे हो गया, उजरत के मुशाबे हो गया, गोया जिहाद पर नहीं जा रहे तो उनसे उजरत ले रहा है, या यूं कहो जैसे उजरत की तरह हो गया कि इनसे लेगा और वो लश्कर वालों को देगा। ये तो उनको जिहाद जो इबादत थी उसकी उजरत दे रहा है, और इताअत की तो उजरत देना जायज नहीं है भाई। तो ये माना है ले अन्नहु युश्बिहुल अजरा, इसलिए क्योंकि ये उजरत के मुशाबे है। वला जरूरत इलैही, और नीज इसकी जरूरत भी नहीं है। ले अन्न माल बैतिल माल मुअद्दुन लिनवाइबिल मुस्लिमीना, इसलिए क्योंकि बैतुल माल का जो माल है मुअद्दुन, उसको तैयार किया गया है लिनवाइबिल मुस्लिमीना, मुसलमानों की मुसीबतों और हादसात के लिए। नवाइब जमा है नाइबतुन की, और नाइबा कहते हैं हादसे को और मुसीबत को भाई। कहते हैं ली अन्न माल बैतिल माली मुअद्दुन लिनवाइबिल मुस्लिमीना, इसलिए क्योंकि बैतुल माल का जो माल है वो मुसलमानों के हवादिसात और मुसीबतों के लिए तैयार किया गया है। फैजा लम यकुन, हां जब माले फै न हो, फैजा लम यकुन जब माले फै न हो, फला बासा फिर कोई हरज नहीं है, फिर तो जरूरत है, फिर हाकिम लोगों से टैक्स वसूल कर सकता है भाई। और नीज इसलिए भी क्योंकि इस सूरत में ये जिहाद बिल माल बन जाएगा जी। क्या बन जाएगा, जिहाद बिल माल बन जाएगा, कि भाई अल्लाह ने जानों और मालों के साथ जिहाद करने का हुक्म दिया है, तो जो लोग पीछे बैठे हैं वो अपनी जानों के साथ तो जिहाद नहीं कर रहे, तो वो माल के साथ जिहाद कर रहे हैं भाई। ये माना है फैदा लम यकुन, जब कोई चीज बैतुल माल में ना हो, फला बासा तो फिर कोई हरज नहीं है। बी अयु कविया बाजुहुम बाजा, बाई सूरत के बाज बाज को ताकतवर बनाए। कव्वा यु कवी तकविया का माना है दूसरे को ताकतवर बनाना, मजबूत करना, तो फिर कोई हरज नहीं है। बी अयु कविया बाजुहुम बाजा, कि वो बाज बाज को ताकतवर करें, या यूं बा मुहावरा तर्जमा यूं करें, बी अयु कविया बाज हम बाजा, कि वो एक दूसरे को ताकतवर करें, फिर कोई हरज नहीं है कि एक दूसरे को ताकतवर बनाए। ले अन्न फीहि दफअ ज़रर आला, इसलिए क्योंकि इसके अंदर आला यानी बड़े जरर को दूर करना है। बिल हाकिल अदना, अदना जरर मिलाते हुए, यानी मुसलमानों से माल लिया जा रहा है, तो नुकसान तो इनका हो रहा है लेकिन यह कम दर्जे का नुकसान है और इसकी वजह से बड़ा जरर और शर जो है दुश्मन का वो दूर हो जाएगा। तो बड़ी तकलीफ को दूर करने के लिए थोड़ी तकलीफ को बर्दाश्त किया जा सकता है। तो कहते हैं लिअन नफी ही दफा जरर इल आला, इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो ऊंचा जरर है उसको दूर करना है। बी इल्हाक इल अदना, अदना जरर मिलाते हुए। युअय्यिदुहु अन्न नबी अलैहि सलातु वस्सलाम अखज़ा दुरूअन मिन सफ़वान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दुरूअन, भाई दुरू जमा है दिरउन की, और दिरउन कहते हैं वो जंगी लिबास, भाई वो जो लोहे की कमीज बनी होती है जिसे जंग के अंदर जिहाद के अंदर पहना जाता है ताकि अपने आप को तीरों से और तलवार के वार से महफूज किया जा सके। तो साहिब हिदाया फरमाते हैं कि अगर जरूरत हो तो फिर एक दूसरे की मदद की जा सकती है जिहाद के अंदर। इसकी ताइद इस बात से भी होती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सफवान रजी अल्लाह तआला अन्हु से कई जेरहें ली और आम सहाबा को दे दी। हजरत सफवान रजी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र पीछे भी आया था भाई बाबू सरीका के अंदर कि हजरत सफवान रजी अल्लाह तआला अन्हु ताखीर से इस्लाम लाए थे और ये मस्जिद नबी में सोए हुए थे और इनके सर के नीचे इनकी चादर थी। एक चोर ने वो चादर चुराने की कोशिश की और वो चादर उठा ली कि हजरत सफवान रजी अल्लाह तआला अन्हु बेदार हो गए और उनको पकड़ लिया और हुजूर अलैहि सलाम ने फिर उस चोर का हाथ कटवा दिया था। तो ये हजरत सफवान रजी अल्लाह तआला अन्हु इनसे यौम हुनैन के मौके पर हुजूर अलैहि सलाम ने कई जिरहें ली और सहाबा को दे दी। तो हजरत सफवान रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे या रसूल अल्लाह क्या ये जिरहें आपने मुझसे छीन ली हैं? तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि नहीं, ये जिरहें इस्तेमाल के लिए ली गई हैं और इनका जमान तुम्हें मिलेगा अगर ये जाया हो गई। तो साहिबे हिदायत फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत सफान रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिरहें लेकर और सहाबा को दी। मालूम हुआ जिहाद में जरूरत हो तो फिर एक दूसरे की मदद की जा सकती है माल के जरिए। तो कहते हैं यू अई दुहू, इसकी ताइद होती है इस बात से कि अन्न नबी अलैहि सलातु वस्सलामु के हुजूर अलैहि सलाम ने आखाजा दुरू अम मिन सफवान रजी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर अलैहि सलाम ने जिरहें ले ली हजरत सफवान रजी अल्लाह ताला अन्हु से। व उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कान युगजिल अजब अन दिल हलीलती। अगजा युगजी का माना है किसी को जिहाद के लिए भेजना। आजब, आजब उसे कहते हैं जिसकी बीवी ना हो बई, इन यूं कहें गैर शादीशुदा बई, गैर शादीशुदा। अनजिल हलीलती, हलीला बीवी को कहते हैं भाई क्योंकि वो इंसान के लिए हलाल होती है, तो बीवी को क्या कहते हैं हलीला। और जुल हलीला का माना है बीवी वाला, जैसे जू माल का माना है माल वाला। तो जुल हलीला से मुराद है शादीशुदा आदमी भाई, जिसकी बीवी मौजूद है यानी शादीशुदा है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो जिहाद के अंदर गैर शादीशुदा को तरजीह देते थे शादीशुदा पर भाई। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो गैर शादीशुदा को तरजीह देते थे। और फिर जिहाद पर जाने वालों के पास अगर घोड़ा वगैरह ना होता था तो जो लोग जिहाद पर नहीं जा रहे उनके पास अगर घोड़े वगैरह होते तो हजरत उमर वो लेकर उन मुजाहिदीन को दे देते थे। मालूम हुआ जरूरत हो तो जिहाद के मौका पर मुजाहिदीन की मदद की जाएगी भाई। तो कहते हैं वह उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कान युग़ज़िल आज़बा, और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जिहाद पर भेजते थे अल आज़बा गैर शादी शुदा को। अनज़िल हलीलती, शादी शुदा के मुकाबले में। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु गैर शादी शुदा को बीवी वाले की तरफ से भेजते थे यानी उसके मुकाबले में उसे तरजीह देते थे। वह युअति शाखिसा फरसल कायदी, शाखसा यशखसु का माना है रवाना होना। वह युअति शाखिसा, और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अता कर देते थे अशाखिसा वो जो जिहाद पर रवाना होता था उसको। फरसल कायदी, जिहाद से बैठने वाले का घोड़ा, जो जिहाद से बैठा है यानी जिहाद पर नहीं जा रहा उसका घोड़ा जिहाद पर रवाना होने वाले को दे देते थे। यह माना है वह युति शाख हिसा फरसल कायदी, और रवाना होने वाले को बैठने वाले का घोड़ा दे देते थे। आगे देखिए बाबू कैफियत इल किताल, ये बाब है लड़ाई की कैफियत के बयान में। भाई यहां तक साहिब हिदाया ने बयान फरमा दिया कि जिहाद फर्ज किफाया है और किन किन लोगों पर जिहाद फर्ज है और किन पर जिहाद फर्ज नहीं है। आप उस लड़ाई का तरीका बतलाएंगे कि किस तरह जिहाद पर जब निकलें तो लड़ाई कैसे की जाएगी। साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे कि जिहाद के अंदर जब निकलें तो फौरन लड़ाई शुरू नहीं की जाएगी, बल्कि पहले दुश्मन को पैगाम भेजा जाएगा कि वो इस्लाम कबूल कर लें। अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करते तो फिर उन्हें कहा जाएगा कि तुम जिजिया अदा करो। अगर वो जिजिया भी अदा नहीं करते फिर उनके साथ लड़ाई की जाएगी, और अगर वो मुसलमान हो जाते हैं या जिजिया देने पर राजी हो जाते हैं फिर उनसे लड़ाई नहीं की जाएगी। तो कहते हैं बाबु कैफियत अल-क़िताली, ये बाब है लड़ाई की कैफियत के बयान में। व इदा दखल अल मुस्लिमून दार अल हर्बी, और जब मुसलमान दारुल हर्ब में दाखिल हो जाएं, फहासरू मदीनतन औ हिस्नन, हासरा युहासिरू मुहासरा के माने हैं मुहासरा करना, घेरे में ले लेना, और हिस्न भाई स्वाद के साथ है, हिस्न किले को कहते हैं। तो कहते हैं जब मुसलमान दारुल हर्ब में दाखिल हो गए, फहासरू मदीनतन औ हिस्नन, फिर उन्होंने घेरे में ले लिया किसी शहर को या किसी किले को, दाउहुम इलल इस्लामी, तो मुसलमान उनको दावत देंगे इस्लाम की तरफ। लिमा रवा इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, उस हदीस की वजह से जिसको हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने रिवायत फरमाया है कि अन नबी अलैहि सलातु वस्सलाम मा कातला कौमन हत्ता दआहुम इलल इस्लाम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अन नबी अलैहि सलातु वस्सलाम मा कातला कौमन, कि हुजूर अलैहि सलाम ने किसी कौम से लड़ाई नहीं की, हत्ता दआहुम इलल इस्लामी, यहां तक कि उनको दावत दी इस्लाम की तरफ। पहले इस्लाम की दावत देते थे, फिर अगर वो कबूल न करते तो उसके बाद लड़ाई होती। फइन अजाबू, याद रखो अजाब युजीबू इजाबतन का माना है कबूल करना। फइन अजाबू, अगर उन दुश्मनों ने इस्लाम कबूल कर लिया, कफू अन क़िताल्हिम, तो मुसलमान रुक जाएंगे उनके साथ लड़ाई से, लिहुसूलिल मकसूदी, मकसद हासिल हो जाने की वजह से, कि मकसद भी क्या था, इलाए कलिमतुल्लाह था, और वो मकसद हासिल हो गया है, ये लोग मुसलमान हो गए हैं। तो कहते हैं लिहुसूल इल मकसूदी, मकसूद हासिल होने की वजह से। वक़द क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तहकीक हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया है, उमिर तो अन उकातिल नासा, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से लड़ाई करूं, हत्ता यकूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, यहां तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दें, यहां तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दें। देखो इस हदीस से भी मालूम हुआ कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद लड़ाई नहीं की जाएगी भाई। तो कहते हैं उमिर तो अन उकातिल नासा, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से लड़ाई करूं, हत्ता यकूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, यहां तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दें। अल हदीसु, इसको मरफू पढ़ें, इसको मुब्तदा बना लें और खबर महजूफ निकाल लें। अल हदीसु मारूफुन, हदीस मारूफ है, मशहूर है। आगे देखिए, व इनिम तनाऊ दाउहुम इला अदा इल जिजियति, व इनिम तनाऊ, और अगर वो रुके रहे यानी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, दाउहुम इला अदा इल जिजियति, तो मुसलमान उनको दावत देंगे जिजिया अदा करने की तरफ कि हमें जिजिया अदा कर दो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम तुमसे जंग नहीं करेंगे। तो कहते हैं वह इनिम तनाऊ, और अगर वो कुफार रुक गए इस्लाम कबूल करने से, दाउहुम इला अदा इल जिजियति, तो मुसलमान उनको दावत देंगे जिजिया अदा करने की तरफ। बिही अमारा रसूलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम उमरा अल जुयूशी, इसी का हुक्म दिया था हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम ने उमरा अल जुयूशी, लश्करों के अमीरों को। जब हुजूर अलैहि सलाम कोई लश्कर रवाना फरमाते जिहाद के लिए, तो लश्कर के जो अमीर होते थे उनको हुजूर अलैहि सलाम इसी बात का हुक्म देते थे कि इस्लाम की दावत दो, और अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करते तो फिर उनको जिजिये की दावत दो। बात समझ में आ गई। वली अन्नहु अहदु मा यंतही बिहिल क़िताल, और इसलिए क्योंकि यह भी उन चीजों में से एक है जिसकी वजह से लड़ाई खत्म हो जाती है, अला मा नतका बिही नसु, उस वजह से कि जिस पर नस ने तकल्लुम किया है, नस के अंदर आया है भाई। कुरान में अल्लाह जिहाद का हुक्म देते हुए फरमाते हैं, कातिलुल्लदीन ला युमिनून बिल्लाह, कि जो लोग अल्लाह पर ईमान नहीं लाते उनसे लड़ाई करो, और आगे आखिर में अल्लाह फरमाते हैं हत्ता युअतुल जिजिया था, यहां तक कि ये जिजिया दे दें। मालूम हुआ कि जब जिजिया दे देंगे तो उसके बाद उनसे लड़ाई नहीं की जाएगी। ये बात कुरान से मालूम हो रही है भाई। तो कहते हैं वली अन्नहु अहदु मा यंतही बिहिल किताल, इसलिए क्योंकि जिजिया देना ये भी उन्हीं चीजों में से एक चीज है जिसके जरिए लड़ाई खत्म हो जाती है। अला मा नतका बिहिन नसु, उस वजह से जिस पर नस ने तकल्लुम किया है। वहादा फी हक मन युकबलु मिन्हुल जिजियतु, और ये उनके हक में है कि जिनसे जिजिया कबूल किया जा सकता है। याद रखो जिजिया तमाम कुफार से कबूल नहीं किया जा सकता। अगर कोई लोग मुर्तद हो गए हैं, पहले मुसलमान थे और अब मुर्तद हो गए, तो उनसे जिजिया कबूल नहीं किया जा सकता भाई। वो या तो इस्लाम ले आए या उनसे जंग की जाएगी और उनको कत्ल किया जाएगा, उनकी तरफ से जिजिया कबूल करना जायज नहीं है। ये इसी तरह जो अरब मुशरिकीन हैं, अरब मुशरिकीन हैं, उनका हुक्म भी और मुशरिकीन से अलग है। अरब के मुशरिकीन जो हैं उनका हुक्म भी बड़ा सख्त है, वो भी या तो इस्लाम लाएंगे या उनसे जंग की जाएगी और उनको कत्ल किया जाएगा, उनसे जिजिया कबूल करना जायज नहीं है। उनसे लड़ाई सिर्फ इस्लाम लाने की सूरत पे खत्म होगी। अगर वो इस्लाम ले आते हैं तो अच्छी बात है, अगर वो इस्लाम नहीं लाते तो फिर उनसे लड़ाई की जाएगी और उनको कत्ल कर दिया जाएगा। वजह यह कि कुरान उनकी जुबान के अंदर नाजिल हुआ भाई, तो ये कुरान के एजाज को सबसे ज्यादा जानने वाले हैं। कुरान सुनते ही पता चल जाता है कि यह इंसानी कलाम नहीं है, किसी इंसान के बस में नहीं है कि वो इस कदर फसीह और बलीग़ कलाम कर सके। तो कुरान की फसाहत तो बलागत के बावजूद ये इस्लाम नहीं लाते तो इनसे जिजिया नहीं लिया जाएगा, बल्कि इनसे लड़ाई की जाएगी भाई। तो कहते हैं वहादा फी हक मन युकबलु मिन्हुल जिजियतु, और ये उनके हक में है जिनसे जिजिया कबूल किया जाएगा। व मन ला तुकबलु मिन्हु, और जिनसे जिजिया कबूल नहीं किया जाएगा। कल मुर्तद दीन है, जैसे कि मुर्तद हैं। व आबदतिल अवसानी मिनल अरबी, और वो जो बुतपरस्त हैं अरबों में से। अवसान वसन की जमा है, बुत को कहते हैं। वह आबदतिल अवसानी मिनल अरबी, और जो अरब के बुत परस्त हैं तो उनसे जिजिया कबूल नहीं किया जा सकता। तो ला फायदा तफी दुआ इहिम इला कबूल जिजियती, तो कोई फायदा नहीं है इनको जिजिया कबूल करने की तरफ दावत देने का। ले अन्नहुम ला युकबलु मिनहुम इल्लल इस्लामु, इसलिए क्योंकि इनसे कबूल नहीं किया जा सकता इल्लल इस्लामु, सिवाय इस्लाम के, यानी इस्लाम के अलावा कोई और चीज इनसे कबूल नहीं की जा सकती। قال الله تعالى, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं تقاتلونهم او يسلمون, تقاتلونهم यानी कि तुम इनसे, ये जो मुशिकीन अरब हैं इनसे तुम लड़ाई करो। او يسلمون اي الى ان يسلمون, यहां तक कि ये इस्लाम ले आए भाई। मालूम हुआ मुशिकीन अरब जो है उनका हुक्म अलग है, उनसे सिर्फ इस्लाम को कबूल किया जाएगा। अगर वो इस्लाम ले आते हैं तो अच्छी बात है, वरना उनसे लड़ाई की जाएगी और उन सबको कत्ल कर दिया जाएगा भाई। ये माना है قال الله تعالى, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं तो قاتلونهم او يسلمون, कि तुम इनसे लड़ाई करो यानी इन मुशरिकीन अरब से तुम किताल करो। औ युस्लिमूना, या ये कि वो मुसलमान हो जाएं। और मैंने बताया ये औ किस माना में है, इला अन के माना में है, कि तुम इनसे लड़ाई करो यहां तक कि ये मुसलमान हो जाएं। अगर मुसलमान नहीं होते तो लड़ाई की जाएगी और उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। आगे देखिए فَإِن بَذَلُوهَا فَلَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ। भाई पहली सूरत क्या थी कि मुशरिकीन को दावत इस्लाम दी जाएगी, अगर इस्लाम कबूल नहीं करते तो फिर उनको जिजिया कबूल करने की दावत दी जाएगी, अगर वो जिजिया कबूल कर लेते हैं फिर भी उनसे जंग नहीं की जाएगी। यही बयान फरमा रहे हैं, फइन बज़लूहा, अगर उन्होंने वो जिजिया कबूल कर लिया। बज़ला यबज़ुलू का माना होता है खर्च करना और अदा करना, लेकिन यहां मुराद है कबूल करना। साहिब हिदायत भी आपको बतलाएंगे कि यहां बजल से क्या मुराद है, कबूल करना। कहते हैं फइन बज़लूहा, अगर उन मुशरिकीन ने जिजिया कबूल कर लिया, फलहुम्मा लिल मुस्लिमीना, तो उनके भी वही हुकूक होंगे जो मुसलमानों के हैं, वा अलैहिम्मा अलल मुस्लिमीना, और उन पर भी वही जिम्मेदारियां होंगी जो मुसलमानों पर हैं। यानी जैसे मुसलमानों का जान और माल महफूज है, इनका भी जान और माल महफूज है। لقول علي رضي الله تعالى عنه حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کی وجہ سے انما بذل الجزية تھا کہ انہوں نے جزیہ قبول کیا ہے ليكون دماؤهم كدمائنا تاکہ ان کے خون ہمارے خونوں کی طرح ہو جائیں واموالهم كاموالنا اور ان کے مال ہمارے مالوں کی طرح ہو جائیں। बास कबीलों ने जिजिया देना कबूल कर लिया था तो हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि इन्होंने जिजिया कबूल किया है ताकि इनके खून भी हमारे खूनों की तरह हो जाएं, यानी जैसे हमारे खून मासूम और महफूज हैं इनके भी खून महफूज हो जाएं, और जैसे हमारे माल महफूज हैं इसी तरह इनके माल भी महफूज हो जाएं, इसलिए उन्होंने जिजिया देना कबूल किया है। फिर देख लीजिए लिकौल अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के कौल की वजह से कि आपने फरमाया इन नमा बजलुल जिजिया था कि इन मुशरिकीन ने जिजिया कबूल किया है लियकून दिमा उहुम का दिमा इना व अमवाल उहुम का अमवाल इना ताकि इनके खून भी हमारे खूनों की तरह हो जाएं और इनके माल भी हमारे मालों की तरह हो जाएं, यानी महफूज हो जाएं। वल मुराद बिल बजलिल कबूल, ऊपर मतन में जो आया था फ इन बजलू हा, मैंने बताया था इसका क्या माना है, कबूल करना, वही बयान फरमा रहे हैं। कहते हैं वल मुराद बिल बजलिल कबूल, और बजल से मुराद जो है कबूल करना है। वैसे मैंने बतलाया बजल का क्या माना है, खर्च करना, खर्च करना और अदा करना, और मुराद क्या है, कबूल करना, क्योंकि क्योंकि कबूल करना ही सबब है खर्च करने का जी। तो यहां मुसब्बब बोलकर सबब का इरादा किया गया है, क्योंकि कबूल करेंगे तो फिर अदा भी करेंगे, तो कबूल करना है सबब और खर्च करना और अदा करना यह है मुसब्बब, तो मुसब्बब बोलकर सबब का इरादा किया गया है। बात समझ में आ गई, तो कबूल करेंगे फिर ही अदा भी करेंगे यानी खर्च भी करेंगे, तो मुसब्बब बोलकर क्या मुराद है, सबब मुराद है। तो कहते हैं वल मुरादु बिल बज़लिल कबूल, तो बज़ल से मुराद कबूल करना है। व कदल मुराद बिल इअताइल मज़कूरी फीही फिल कुरआनी, और इसी तरह वो इअता जो कुरान के अंदर जिजिया के बारे में मज़कूर है उससे भी यही मुराद है। कुरान के अंदर अल्लाह फरमाते हैं हत्ता युअतुल जिजियाता, यहां तक कि वो जिजिया दे दें, यहां भी क्या माना है, यहां तक कि वो जिजिया कबूल कर लें, तवज्जो है, तो ये माना है। वकदल मुराद बिल इअता इल मज़कूरी, और यही मुराद है उस इअता से भी जो मज़कूर है, फी ही उस जिजिया के बारे में, फिल कुरआनी कुरआन के अंदर, वल्लाहु आलम और अल्लाह खूब जानने वाले हैं। हमने तो ये माना बयान कर दिया कि कुरान के अंदर भी इअता से मुराद कबूल करना है, बाकी हकीकत तो अल्लाह ही जानते हैं, हमें यही माना इससे समझ में आया। भाई सवाल पैदा होता है कि मतन के अंदर आया था फइन बज़लूहा, अगर उन्होंने जिजिया खर्च किया, साहिब हिदायत फरमा रहे हैं इसका माना यह है अगर उन्होंने जिजिया कबूल कर लिया, और कुरान के अंदर भी आया है हत्ता युअतुल जिजियाता, यहां तक कि ये जिजिया दे दें, और साहिब हिदायत फरमा रहे हैं कि कुरान के अंदर भी इअता से मुराद कबूल करना है। इसकी वजह क्या है, भाई वजह यह है कि जब ये जिजिया कबूल कर लेंगे तो उस जंग खत्म हो जाएगी जी। तो जंग, और अगर बजल का अपना माना करें तो इसका मतलब है जब तक वो जिजिया देंगे नहीं उस वक्त तक जंग खत्म नहीं, हत्ता युअतुल जिजियाता, यहां तक कि वो जिजिया दे दें, तो इसमें भी देने का जिक्र है, हालांकि जिजिया जब कबूल कर लिया तो उसी वक्त अदा करना जरूरी नहीं है, उसमें बाकायदा वक्त मुकरर किया जाएगा भाई कि साल के अंदर फुला महीने के अंदर तुम हमें इतना जिजिया अदा किया करोगे, तो तो अगर बजल का और एता का अपना माना करें तो मतलब यह है कि जब तक जिजिया दिया नहीं तब तक जंग भी खत्म नहीं, और अगर इनका माना कबूल करने के कर लें तो मतलब यह है जैसे ही उन्होंने जिजिया कबूल कर लिया तो अब उनसे जंग नहीं की जा सकती। बात समझ में आ गई भाई। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।